आप लोग जो यहाँ से आवाज कर रहे हैं, सब कृपा करके शांत हो जाइए। ये कुछ अच्छा नहीं लगता है कि आप लोग इतनी आवाज कर रहे हैं और हजारों आदमी शांत बैठे हैं, उनको भी सुनने नहीं देना चाहते हैं। ये मेरी निगाह में इंसानियत नहीं है। इंसान का ये काम है कि कोई काम जब चलता है तो उसमें दखल न दे, उसमें उसमें आवाज न करे और दूसरे करे। हमारी सभ्यता भी वही सिखाती है, लेकिन अभी वहाँ लोग आपस आपस में बातें कर रहे हैं, आवाज चलता है, वो कोई अच्छी बात मुझको नहीं लगती है। मैं तो लाचार हो गया हूँ कि इतनी आवाज में भी जो कुछ भी कहना है, ये लोग अगर मेरे सामने बैठे हैं, बहने बैठी है, भाई लोग बैठे हैं, वो सुन सकते हैं, तो मैं कुछ न कुछ सुना दूँ। आपको समझना चाहिए कि मैं इस जगह पे दोबारा आता हूँ। एक वक्त यहाँ हिंदू और मुसलमानों में कुछ झगड़ा हो गया था। मैं उस जमाने में कलकत्ते में रहता था और मौलाना साहेब भी यहाँ थे, तो मुझको पता चला कि यहाँ झगड़ा हो रहा है और यहाँ से ही कोई आदमी दौड़ते आए थे कि चलो वहाँ झगड़ा होता है तो कुछ भी निपट सकता है तो निपटा दो। तो मौलाना साहेब भी वहीं मेरे साथी थे, उस वक़्त हम एक ही जगह में थे, साथ लेते नहीं थे, लेकिन इसके पास से वहाँ थे। तो मैंने कहा कि तब तो हमारे जाना चाहिए, तो मौलाना साहेब और मैं वो दोनों तैयार हो गए और हम यहाँ आ गए। ऐसा बनता है, ईश्वर की कृपा रहती है कि इतने में तो शांत ही हो रहा था, तो हमको दोनों को यश मिल गया कि अच्छा वो यहाँ आए और झगड़ा मिट गया। कुछ पीछे झगड़ा करने वाले थे, उसमें काफ़ी हिंदू भी पड़े थे, मुसलमान भी थे, दोनों को समझाया और दोनों ने कह दिया कि अभी हमें झगड़ा होने वाला नहीं है। ये तो बहुत वर्षों की बात है, कौन से वर्ष में मैं आया था वो तो मुझको पता नहीं है, लेकिन उसके बाद ये दूसरा समय है। अच्छा है कि आज तो हिंदू मुसलमानों में कोई फसाद नहीं है और सब मिलजुल कर रहते हैं। मेरी उम्मीद ऐसी रहेगी कि इसी तरह से हिंदू और मुसलमान एक दूसरों से मिलजुल कर हमेशा के रहें, हमेशा दोस्त बनकर ही रहें, कभी एक दूसरों के दुश्मन न बने। इस बारे में मैं तो काफ़ी कह चुका हूँ, लेकिन यहाँ तो काफ़ी दूसरे तो रहते हैं, लेकिन मजदूर वर्ग भी काफ़ी रहने वाले हैं। तो मैं उनको तो कह दूँगा कि आपको वह हिंदू है या तो मुसलमान है, कभी भी एक दूसरों की अदावत नहीं होनी चाहिए, एक दूसरों के साथ लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि मजदूरों के बीच में अगर मैं हिंदू हूँ, एक मुसलमान है, दूसरा पारसी है, सिख है, पारसियों में तो कोई मजदूर तो रहते नहीं है करीब करीब, लेकिन दूसरे तो रहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि मजदूर मजदूर ही, उसको दूसरा कोई है ही नहीं। वो अपने घर में तो नमाज पढ़ेगा, गायत्री पढ़ेगा, वो दूसरी बात है, वो अपने घर की बात हुई, लेकिन मजदूरी में हो सकता है कि एक तो हिंदू है तो उसको ज़्यादा पैसा दो, मुसलमान है उसलिए उसको कम दो। मुसलमान को अगर कम पैसा मिलता है तो उसमें होशियारी कम है, हिंदू को कम मिलता है तो उसमें होशियारी कम है। मजदूर लोग तो मजदूरी करते हैं, वो तो मालिक लोगों के लिए है। ऐसा मौका के लिए मैं तो इंतजार करा हूँ कि मजदूर और मालिक के बीच में कोई फर्क ही न रहे। मालिक जैसे कोई नाम भी रहता है तो काम तो वो भी मजदूर जैसा ही करता है और मजदूरों का ट्रस्टी बनकर वो रहता है। लेकिन वो जमाना तो जब आना है तब आचा है। आज तो हमारे पास मालिक तो पड़े हैं, मजदूर पड़े हैं। कोई मालिक ऐसा नहीं है कि जो मजदूरों के खातर वो काम करता है, अपने पैसे रोकता है और अपने साथ दूसरे पैसे वाले हैं उनको भी ले लेता है, इसलिए वो सब शेयर होल्डर से बन जाते हैं। तो वो सारी के सारी शेयर होल्डर कंपनी एक बनी है, वो मालिक की जगह ले लेती है और मजदूर लोग उनके मातहत काम करते हैं। जब मजदूर अपना अपना पेशा समझ लेंगे और ये समझ लेंगे कि मजदूर भी मालिक जैसे ही हैं, मालिक है उसके पास तो चांदी के रुपये रहते हैं या सोना की मोहर रहती है, तांबे के पैसे रहते हैं, लेकिन आखिर में उसके पास कुछ न कुछ ऐसे पैसे हैं, तब मजदूर किस चीज़ का मालिक है। तो मैंने तो कह दिया है, जब से मैं आया हूँ तब से दक्षिण अफ्रीका से समझ कर आया कि मजदूर है वो तो सच्चा पैसेदार है। उनके पास जो पड़ा है पैसा, अपने हाथ और पैर, अपनी मेहनत, वो मेहनत है वो तो सच्चे पैसे बने, वो नई पैसे बने हैं उनके पास। क्यों? कि उनके पास इतनी अक्ल नहीं पड़ी, अपनी मजदूरी की कीमत वो रखता नहीं है और मिस्किन बनकर बैठ जाता है कि मेरे पास कुछ नहीं। या जो मिस्किन बनकर नहीं बैठता है तो पीछे लड़ाई करता है, मालिक को मारता है, कोई तो मालिक को मार डालते हैं। तो इससे तो मजदूरों की कोई भलाई नहीं होती है। मैंने नहीं देखा कि इस तरह से झगड़ा करके मालिक के पास है वो छीन लिया। तो मालिक के पास जो अक्ल पड़ी है, उनके पास जो नकद पैसे पड़े हैं, वो पैसे का क्या होगा? वो पैसे लूट लें तो उस पैसे में तो कुछ होता नहीं है। इसलिए मजदूर को जब पूरी पूरी समझ आ जाएगी, तब मजदूर समझ लेगा कि मैं जो काम करता हूँ उसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मालिक काम करता है तो दूसरों को पैसे, उसके पास एक रुपया है उसको भी मिला लेता है। तो जब करोड़ रुपये इकट्ठे हो जाते हैं, एक थैली में पड़ते हैं, तब उसकी कीमत बढ़ती है। जैसे पानी के अलग अलग बूंद रहते हैं, उसकी कीमत कोई नहीं करता, लेकिन वो अलग अलग बूंद होकर एक समुंदर बनता है तो उस पर तो बड़े बड़े जहाज चल जाते हैं। वो जो पानी की कीमत हो जाती है, तब पानी के बूंद मिल जाते हैं। तब इसी तरह से पैसे जब मिल जाते हैं और उसमें से कंपनी बन जाती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और दूसरे उसमें पीछे दखल नहीं देते। पीछे ऐसी कंपनियां बहुत पड़ जाती है तो ऐसे समुंदर में बहुत पड़े हैं, लेकिन जब तक वो समुंदर की हैसियत से रहते हैं तब तक उनकी वो उस पर बड़े बड़े जहाज भी जा सकते हैं। इसी तरह से अगर मजदूर लोग समझ जाएं कि हमारी मजदूरी है उसको भी हम इकट्ठे करेंगे, एक मजदूर जाता है तो वहाँ दूसरा मजदूर मेरे वहाँ आता है, माना कि मैं मालिक हूँ, और वो कहता है कि भाई मैं आपका काम 14 आना में कर दूंगा, आपका जो मजदूर है वो तो एक रुपया में करता है, और माना कि मैं बदमाश मालिक हूँ तो मैं ये करता हूँ तो मुझको 14 आना में मजदूर मिल जाता है तो मैं एक रुपया क्यों दूँ? तो इसलिए एक रुपया वाला मजदूर है वो भाग जाता, भगा देता हूँ मैं, और पीछे 14 आना में जो काम करता है उसको ले लेता हूँ। अगर मजदूर सब समझ जाए कि हमारी सब की एक ही कीमत होने वाली है, कोई भी मजदूर को ले लो तो उसको कोई फुसला नहीं सकता है मालिक, उसको न ज़्यादा देकर फुसला सकता है और अपने ओर लाता है, न कम देकर जो ज्यादा पैसा देने वाले हैं उसको हटा सकता है। ऐसे जब मजदूर, वो तो कोई बड़ी उसमें अकल नहीं चाहिए कि तब वो मालिक सा बन जाता है और मालिक को पीछे दरकार रहती है, उसकी उसकी उसको खुशामद करनी पड़ेगी। मैंने ऐसे मालिकों को देखा है कि जो मजदूरों की खुशामद करते हैं कि आप मेरा काम चला दीजिए, न चलाए तो वो क्या सांचा चलाएगा, वो तो पैसा निकाल सकता है, उसको पता भी नहीं है कि उसका इंजन किस तरह से चलता है और किस तरह से नहीं। इसलिए मैं कहूँगा कि एक इंजीनियर है वो भी मजदूर है, और जो हाथों से काम करने वाला है वो भी मजदूर है। वो सब अगर मिल गए तो झगड़ा पीछे हो नहीं सकता, और वो मारपीट करने की तो कोई बात ही नहीं रहती है, उसमें कोई गुंजाइश रहती नहीं है। वो मालिकों के साथ फैसला कर लेगा कि आपकी अगर वो पैसे पड़े हैं आपको मुबारक, हमें आपको पैसे नहीं चाहिए, हम दूसरी जगह पे चले जाएंगे, लेकिन हमको जो चाहिए इस तरह से मकान होने चाहिए, इस तरह से हमारे लिए अस्पताल होने चाहिए, हमारे लड़कों को लड़कियों को सिखाने का इंतजाम होना चाहिए, और हमको पैसे चाहिए कि जिस पैसे से हम खाना थोड़ा खा लें, इतना नहीं, लेकिन हमें चावल चाहिए, गेहूँ चाहिए, भाजी चाहिए, फल चाहिए, दूध चाहिए। अगर हम मांस खाते हैं तो हमको मांस चाहिए, मछली खाते हैं तो हमको मछली चाहिए, उसके जो पैसे हैं। और कुछ विवाह होते हैं हमारे में, कोई मर जाते हैं, उसमें जो पैसे आते हैं चाहिए वो सब पैसे हमको दे दो, वो देने के लिए तैयार है तो हम आपके साथ सौदा करते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि पैसे और मजदूर दोनों मिलकर काम करते हैं, तब मैं कहता हूँ आपको कि सारी दुनिया को हिला सकते हैं। लेकिन उस मजदूरों में पीछे एक कहें कि मैं हिंदू हूँ तो इसलिए मैं हिंदू को ही काम करूँगा, मेरा मालिक है वो हिंदू ही होना चाहिए, मुसलमान है तो कहता है कि मेरा मालिक मुसलमान ही होना चाहिए, उसके लिए काम करूँगा, हिंदू के लिए नहीं करूँगा। तो मैं कहता हूँ कि दोनों मर गए, हिंदू और मुसलमान, और उसमें से कोई जिंदा रहने वाले नहीं है। ये सब जो फिरकाना वार हम काम करते हैं, तो एक तो मैंने आपके पैसों की बात की और मजदूरों की, दूसरी बात मजदूरों में वो कहें कि मैं हिंदू हूँ और मुसलमान हूँ इसलिए अलग हूँ, तो वो काम नहीं बनता। जब मजदूर और मालिक एक बन जाते हैं, और मजदूरों में कोई ऐसा के हिंदू मुसलमान पारसी इत्यादि वो नहीं बनती है, तो मैं कहता हूँ कि आप तो चैन से रह सकते हैं लेकिन दुनिया भी चैन से रहने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। एक तो मैं क्योंकि मजदूरों के का जो हिस्सा है उसमें आ गया हूँ, और मैं खुद तो अपने को मजदूर मानता हूँ, मैं खुद अपने को भंगी मानता हूँ, मैटर मानता हूँ, झाड़ू निकालने वाला मानता हूँ, मैं अपने को दूसरा कोई तरह से देखता ही नहीं। हाँ, मैं हल चलाने वाला बन सकता हूँ, वो तो बना नहीं, मैंने हल तो नहीं चलाई है, कोदारी तो चलाई है, कोदारी के मार्फत से काफ़ी पेड़ भी मैंने बोए हैं, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ कि मैं एक खेलू बन गया या तो मैं हल चलाने वाला बन गया। लेकिन मेरी कोशिश तो ये है इतनी उम्र से भी कि अगर मैं वो भी चला सकता हूँ तो मैं चलाऊँ, कम से कम दिल से तो मैं वो हूँ, तो इसलिए मजदूर हूँ मैं। तो एक मजदूर की हैसियत से मैं मजदूर भाई है, बहन है, हिंदू है, मुसलमान है, सब के साथ बात कर रहा हूँ। एक तो वो बात हो गई। दूसरी बात जो मुझको आपको कहने की है वो एक नेशनलिस्ट मुस्लिम ने मुझको लिखा है, खासा लिखा है। वो कहते हैं कि आपने कहा है कि नेशनलिस्ट मुस्लिम लीग में शामिल हो जाएं, तो क्या कांग्रेस आजकल सांप्रदायिक संस्था हो गई है? कृपा करके जरा समझा तो दीजिए कि हम लोगों को उम्मीद है कि आप जरूर इस बारे में कुछ तकरीर करेंगे, करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास चंद मुसलमान भाई नेशनलिस्ट है वो मेरे पास आ गए थे और उन्होंने मुझको पूछा, तो उनको मेरी बात में वो बात सारी मुझको कहनी चाहिए तो बड़ा समय लग जाएगा, लेकिन मैंने उनको सुनाया कि आप लोग तो मुट्ठी भर हैं और मुट्ठी भर मुसलमानों को लेकर मैं इतना बड़ा काम करने के यहाँ आ गया तो बड़ा काम नहीं कर सकता था। इसलिए अगर के शहीद साहिब वो नेशनलिस्ट मुस्लिम अपने को नहीं मानते हैं, एक वक्त तो थे और कट्टर नेशनलिस्ट मुस्लिम थे, यहाँ आपके डिप्यूटी मेयर थे तो डिप्यूटी मेयर थे तो वो तो नेशनलिस्ट मुस्लिम की हैसियत से थे। उस वक्त यहाँ सरदार तो देशबंधु दास थे, वो जमाने की मैं आपको बात कर रहा हूँ। बाद में उन्होंने देखा कि अगर मुसलमानों की मैं खिदमत करना चाहता हूँ और मैं मुसलमान हूँ वो तो मिट नहीं सकता हूँ, तो मुझको लीग में जाना चाहिए। लीग का काम तो बहुत फैल गया, सब मुसलमान लीग में आ गए और लीग की ताकत बढ़ गई। उसकी ताकत बढ़ाने वाला मैं नहीं था आदमी, वो गलती में पड़े हैं, या तो कांग्रेस, वो भी बड़ी गलती करते हैं। लीग को कांग्रेस की मदद क्या चाहिए और कांग्रेस की मदद से लीग क्या बढ़ने वाली थी? लीग बढ़ी क्योंकि उसके पास एक बड़ा बहुत आदमी आ गया, कायदे आजम जीना, और वो बड़ी अकल रखता है और बहादुरी भी बड़ी रखता है, और उसको किसी के पास से रिश्वत तो खानी नहीं है। उसके पास लाखों रुपये पड़े हैं, शायद मैंने सुना तो है कि करोड़ रुपये उसके पास पड़े हैं, और वो भी अपनी अकल से, अपनी बैरिस्टरी से, वकालत से, और पीछे वो तो एक बड़ा ताजिर था उसका, वो तो सुपूत है, तो वो तिजारत भी अच्छी तरह से कर सकते हैं। जितने पैसे वो कमाए वो पैसों को उन्होंने इधर उधर रख के उसमें से भी काफ़ी पैसे पैदा कर लिए, तो उनके पास तो बड़े महल जैसे तो मकानात भी पड़े हैं। उनको किसकी दरकार थी? उनकी होशियारी से, उनकी बाहोशी से वो लीग बना है जैसा आज है। मैं इससे कोई लीग की खुशामद करना नहीं चाहता हूँ, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, और मैं कहता हूँ तो वो तो कायदे आजम के कानों तक तो वो चली जानी बात है ना, कि लीग ने कोई गलती नहीं की है ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, काफ़ी गलतियाँ की हैं। लेकिन आज मैं उस गलतियों का की कथा सुनाकर क्या करने वाला था? मैं तो इतना समझ गया हूँ कि गलती की नहीं की, कुछ भी किया, लेकिन कांग्रेस और लीग और उसमें के साथ सिख वो तीनों मिल गए तब तो ये पाकिस्तान बना है। अब पाकिस्तान बना तो अभी झगड़ा तो मिट गया, तो उनकी जो बाहोशी है वो बाहोशी का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ नेशनलिस्ट मुस्लिम को भी वो बाहिश को, बाहोशी को आप फेंक न दें, ऐसा न माने कि लीग कोई चीज़ नहीं है। लीग बहुत बड़ी चीज़ है अगर कांग्रेस बड़ी है तो। कोई ऐसा कहे मुझको कि कांग्रेस को तो उसने बनाई, लॉर्ड डफरिन में बनाई, या तो किसी लॉर्ड ने बनाई या तो अंग्रेजों ने बनाई, तो मैं कहूँगा कि अंग्रेज बेवकूफ है। कांग्रेस ऐसे क्या बनने वाली थी? कांग्रेस बनी है क्योंकि कांग्रेसियों ने बड़ी कुर्बानी की, बड़ी होशियारी बताई, उस्तादी बताई। अब बहुत आदमी मर गए कांग्रेस का काम करते करते, इसलिए कांग्रेस इतनी बड़ी बन गई है। इसी तरह से मैं आपको कहता हूँ कि लीग भी बन गई है। कोई इंसान दूसरों को ढाकर, दूसरों को गिराकर तो बन नहीं सकता है। अगर हम उसको आगे नहीं ले जा सकते हैं, ऊपर नहीं ले जा सकते तो नहीं सही, लेकिन हम उनका बुरा तो न करें, उनकी अदावत तो न करें। अदावत तो वो बेवकूफ आदमी करते हैं, क्यों कि वो तो ऐसा बन नहीं सकते हैं। तो मैं पिछकों को जिन्ना साहेब ऐसे बन गए वो तो किसी बुरी बात हो गई, मैं तो बनने के लायक नहीं, मेरे पास वो बैरिस्टरी नहीं है, मेरे पास वो तिजारत नहीं है, मेरे पास वो अक्ल नहीं है, और पीछे मैं उनके अदावत करूं तो मैं कहूंगा कि मैं पहला नंबर का बेवकूफ हो जाता हूं। इसलिए मैं मेरे नेशनलिस्ट मुस्लिम भाइयों को कहना चाहता हूं कि वो अपना नेशनलिस्ट गंवा न दें, नेशनलिस्ट रहें और लीग में चले जाएं। ऐसा भी या तो एक भी मुसलमान है, मेरे तो ऐसे काफ़ी मुसलमान दोस्त पड़े हैं जिनको मैंने कभी नहीं कहा कि आप लीग में चाहिए या तो कांग्रेस में आइए। कांग्रेस में आने का भी नहीं कहता हूँ, क्यों कि वो शरीफ है, वो बहादुर है, लेकिन इस पॉलिटिक्स में पढ़ते नहीं। ऐसे में तो आपको नाम भी दे सकता हूँ, लेकिन नाम देकर तो आपको उनको पहचाने भी नहीं, पहचानेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि वो कोई 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 ये गलियों में रखड़ते हुए हैं ऐसे मुसलमान नहीं है, लेकिन शरीफ है, उनके पास रोटी भी खुदा ने दे दी है, ऐसे पड़े हैं, तो वो परवाह नहीं करते। वो तो इतना ही समझते हैं कि हम तो शरीफ मुसलमान हैं, अच्छे हैं, कुरान शरीफ पढ़ने वाले हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हम तो दोनों की खुशामद करेंगे, दोनों को राजी रखेंगे, दोनों का हम तो भलाई चाहने वाले हैं। ऐसे मुसलमान मेरे पास काफ़ी पड़े हैं, तो क्या मैं उनको फेंक देता हूँ? क्योंकि मैं उनको न कांग्रेस में आने देता हूँ, न लीग में जाने का उनको कहता हूँ। वो खुशी से जा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको ऐसा नहीं कहा कि आप लीग में तो जाइए। लीग में जाकर वो बेचारे क्या करने वाले थे? उनको खुदा ने वो जैन नहीं दिया है कि जो पॉलिटिक्स में काम कर सकता है। ऐसे लोग रहते हैं, ताजिर पड़े हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते। ऐसे मेरे दोस्त ताजिर का भी पड़े हैं, जो कभी पॉलिटिक्स में जाने की कोशिश तक नहीं करते, कहते हैं हजूर हम जाकर क्या करेंगे, हम तो मुल्क के लिए पैदा करेंगे, और अगर शुद्ध कोड़ी पैदा करते हैं तो अच्छी बात है। इसलिए वो जैसे बाहर पड़े हैं, इसी तरह से नेशनलिस्ट मुस्लिम बाहर रह सकते हैं। मैं उनको कोई लुभाना नहीं चाहता, लेकिन वो माने कि आज हम ताकत नहीं पा सकते हैं, तब मैंने कहा कि वो आप इस किस्म की ताकत चाहते हैं तो लीग में जाएं, और लीग में जाकर जो आपका नेशनलिज्म है वो बता दें। नेशनलिज्म बेच कर लीग में जाना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप बेवफा हैं, तब मैं कहूँगा कि आप इस्लाम के भी बेवफा हैं। इस तरह से कोई आदमी जो अपने दिल में एक चीज़ पड़ी है उसको बेच डाले किसी चीज़ में जाने के लिए, वो कोई इंसानियत में नहीं कहूँगा उसको, उसको मैं मजहब नहीं कहूँगा। इस तरह से मैंने नेशनलिस्ट मुस्लिम को कह दिया। लेकिन इसमें तो ये पूछा है कि तब क्या अभी कांग्रेस हिंदुओं की बन गई? मेरी उम्मीद है कि कांग्रेस कभी हिंदुओं की नहीं बनेगी। कांग्रेस को जितने हिंदुस्तान में रहते हैं, दुश्मन हो या दोस्त, राजा हो या रंक हो, सब की कांग्रेस है, आज तो है और हमेशा के लिए रहने वाली है। जब कांग्रेस ऐसी मिट जाएगी तो कांग्रेस पीछे हिंदू महासभा क्यों न बने? और अब साफ साफ कह दें कि हम हिंदू महासभा बन गए हैं, वो एक बड़ी बुलंद हिंदू महासभा बन सकती है। आज तो कांग्रेस और हिंदू महासभा के बीच में कुछ ऐसा है विषय कि सब एक तरह से देखने वाले नहीं पड़े। लेकिन हाँ, ये है कि हिंदू महासभा में रहें तो भी कांग्रेस में भी रहें। जैसे मालवीय जी महाराज थे, मालवीय जी महाराज ने कभी कांग्रेस में से निकले नहीं और रहें, लेकिन हिंदू महासभा में भी रहें। ऐसे ही हमारे अन्य साहब, वो भी बड़े हैं, लेकिन वो भी हिंदू महासभा में रहें और कांग्रेस में भी रहें। इसी तरह से मैं कहूँगा कि कोई नेशनलिस्ट मुसलमान अगर लीग में जाता है तो वो कांग्रेस में नहीं रह सकता है, ऐसा कांग्रेस का कानून है, ऐसा मैं जानता नहीं। मैं जब कांग्रेस में काम करता था तब तो मैंने तो ऐसा कोई देखा ही नहीं है, ऐसी चीज़ बनी भी नहीं। लीग में क्यों ना जाए, किसी में जाए, लेकिन वो बेवफा ना बने। हाँ, कांग्रेस के उससे बेवफा बन जाते हैं और ये कहें कि नहीं अभी तो लीग में चले गए हैं तो कांग्रेस की मुखालिफत करने के लिए, तब नहीं रह सकते हैं, मैं कबूल करूँगा। लेकिन कांग्रेस की वफादारी करने के लिए लीग में चले जाएं और लीग में भी कांग्रेस का ही काम करें तो उनको जाने से रोके तो लीग रोक सकती है। लीग कहें कि आप तो नेशनलिस्ट मुस्लिम है तो उनको कोई थोड़ा छुपाना है, कहना होगा उनको कहाँ नेशनल मुस्लिम हूँ, आप कांग्रेसी हैं? हाँ, कांग्रेसी भी हूँ, लेकिन मैं इस्लाम का भी खिदमतकार हूँ, इसलिए मैं लीग में आना चाहता हूँ, क्योंकि लीग के मार्फत से मैं काफ़ी काम करूँगा, अकेला पढ़ूँगा तो नहीं कर सकूँगा, तो मुझको लें। मैं आपसे अर्जी करता हूँ कि کہ آپ مجھ کو لیں اور وہ ان کی عرضی ہے وہ قائم قبول کر لیں. قائد اعظم صاحب یا تو جو اس میں سیکرٹری ہے وہ قبول کر لیں کہ آپ کا بھی نام ہم لے لیتے ہیں تو وہ چلے جائیں. اس طرح سے میں نشین مسلم کو کہا کہ جائیں, آپ جا سکتے ہیں, لیکن میں کسی کو مجبور کرنا نہیں چاہتا ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ نہیں جائیں گے تو آپ نیشنلسٹ مٹ جاتے ہیں یا تو نیشنلسٹ کم ہو, ایسا تو میں کسی کو کہہ نہیں سکتا ہوں. یہ میرا مسلمان بھائیوں کے لیے نیشنلسٹ جو ہے ان کو کہنا ہے, لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ کہوں گا کہ وہ اگر پاور کے بھوکے کہ ان کو کوئی سٹہ چاہیے تو نہ وہ نیشنلسٹ ہیں کانگریسی ہیں نہ وہ لیگ کے, نہ لیگ میں ہم رہ سکتے ہیں یا تو کانگریس میں. اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ کانگریس کے مارفت سے ہم بڑے بن جائیں, کانگریس کے مارفت سے کانگریس کے پریسیڈنٹ بنے, حق سب کو, لیکن سب کو پریسیڈنٹ تو بن نہیں سکتا, ایک ہی پریسیڈنٹ بن سکتا ہے. اسی طرح سے لیگ کا, تو لیگ میں ہم رہیں تو بھی خدمت کرنی ہے, کانگریس میں رہیں تو بھی خدمت کرنی ہے, پاور لینے کے لیے کبھی نہیں. تب تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ کہیں بھی رہیں آپ کی قیمت ہے. اگر آپ صرف پاور لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کوڑی کے بننے والے ہیں. تھوڑے دنوں کے لیے آپ کی خوشامد کرنے کے لیے آپ کو لے بھی لیں, لیگ لے لیں, کانگریس لے لیں, لیکن آخر میں آپ اس کو گرانے والے ہیں اور آپ بھی گرنے والے ہیں, اس میں مجھ کو کوئی شک نہیں. ابھی دوسرا سوال ہے وہ بھی ایسا ہی ہے, اور یہاں تو گول مال چل رہا ہے, میں کروں کیا؟ لیکن اس کو میں سچ مچ چھوڑ تو نہیں سکتا ہوں, تھوڑا ہی کہہ دوں گا کہ یہ ہے وہ آزاد ہند فوج کے لوگ, وہ لکھتے ہیں کہ آزاد ہند فوج کی اور سے, وہ تو مانگ پتر ہے, اچھا مانگ پتر, میں اس کو مانتا ہوں. ہم آزاد ہند فوج کے 6 آدمی اس میں دکھائے جو کہ چھوٹا کل میں کام کرتے ہیں, ہم سب آپ کو قومی سرکار بننے کی بدھائی دیتے ہیں. ہم آپ سے عرض کے طور پر دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ سرکار کا آزاد ہند فوج کے بارے میں کیا خیال ہے, وہی چیز ہے اور اسی کو میں مانگ پتر سمجھتا ہوں. تو اتنا ہی اب تو کہہ دوں, کیونکہ بہت لوگ تو بھاگتے ہیں, تو میں کیا آپ کو کہنے والا تھا, لیکن اتنا کوئی بھی آزاد ہند فوج کے لوگ میری سن سکتے ہیں تو میں آپ کو اتنا ہی کہوں کہ آزاد ہند فوج کے بارے میں ابھی تو میں چھوڑوں گا, اس کا جواب میں کل دوں گا. میں اتنی گول مال میں نہیں لے سکتا ہوں, میں لاچار تھا, دینا تو چاہتا تھا, لیکن میں وہ رکھ لیتا ہوں, کل اس کا جواب میں دوں گا.